अगर आप 6 घंटा से कम सोते हैं, योर चांसेस ऑफ डाइंग फ्रॉम कैंसर गोज अप बाय 300%, चांसेस ऑफ डाइंग बाय हार्ट अटैक गोज अप बाय 200%. पीक हार्मोन क्रिएशन हैपेंस इन स्लीप, व्हिच इज व्हाई पीपल हु अंडरस्लीप कांट हैव मोर सेक्स. अगर स्लीप करेक्ट नहीं है, डजंट मैटर आप न्यूट्रिशन पे क्या कर रहे हो और आप एक्सरसाइज पे क्या कर रहे हो, इफ यू डोंट स्लीप यू विल डाई. क्या बोलते थे आपके पेरेंट्स? स्लीप ओवर इट. क्यों बोलते थे स्लीप ओवर इट? जब हम सोने जाते हैं, ड्रीम्स में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाता है. आइंस्टाइन, ही गॉट द आंसर ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन हिज स्लीप. द आइडिया टू बिल्ड गूगल केम टू लैरी पेज इन हिज स्लीप. जब आप सोते हैं, द फर्स्ट फेज जिसको बोलते हैं लाइट स्लीप, एवरी सेकेंड ह्यूमन बींग्स को 11 मिलियन बाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आती है. ब्रेन को रात को डिसाइड करना है इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. जो अनइम्पॉर्टेंट है वो उसको रिसाइकल बिन में डाल देता है. आपके ट्रॉमा को इनएक्सेसिबल फोल्डर में डाल देता है ताकि आप उसको एक्सेस नहीं कर सके.
Okay, tell me 5 सुपर फूड्स विच हेल्प्स इन लिविंग लॉन्गर. हमारा पॉडकास्ट जितने लोग देखते हैं उसमें से 75.6% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते. सो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल से कभी भी कुछ भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब बटन दबाने से हमारी पूरी टीम का मोटिवेशन बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन एंड बेहतर से बेहतर गेस्ट लाने की कोशिश करते हैं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस बिफोर यू स्टार्ट द शो. आज का एपिसोड मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के अराउंड है. इनफैक्ट ये मेरी नहीं, इंडिया में हर तीसरे इंसान की प्रॉब्लम है. दैट इज़ स्लीपिंग पैटर्न इशू. हम लोगों की लाइफ में मोर देन 70-80% प्रॉब्लम जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है वो सॉल्व हो सकती है अगर हमने हमारे सोने का पैटर्न सुधार दिया. तो हमने आज के एपिसोड में डिस्कस किया है कि कैसे हम कम सोने की वजह से कैंसर एंड हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं, कैसे नींद हमें हेल्प करती है हमारे ट्रॉमास और इमोशनल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील करने में, कैसे छोटे बच्चों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज डेवलप हो गई है आज के ज़माने में, एंड कैसे कोई डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है, और हम सब की फैमिली हिस्ट्री क्या क्या है, उन लोगों के मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या है, ये हिस्ट्री पता करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड उसको जानने के बाद हम क्या स्टेप्स लें जिसकी वजह से हम ओवरऑल पूरी फैमिली की हेल्थ बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में एपिसोड है. हमारे आज के गेस्ट हैं प्रशांत देसाई. वो एक लॉन्जिविटी शेरपा है. उनको इतनी नॉलेज है अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दैट आई कैन लिसन टू हिम फॉर आवर्स, एंड ये आपको आज के एपिसोड में पता चलेगा कि क्यों ऐसा है. वो स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए हैं. इन्जॉय द शो, यू विल लव इट. बट वेट, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि हम ऐसे लोग ढूंढने में और उनसे ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालने में बहुत मेहनत करते हैं, एंड आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है. तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को भी जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस पूरे बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको हम एक इंसाइटफुल और बेहतर इंसान बना सकें, ताकि आप आपकी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करके लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकें. एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस, इनफैक्ट बहुत सारी अनकट BTS क्लिप्स के साथ स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जिस पे हम पूरा ये ऑडियो वर्जन डालते हैं. तो हमें स्पॉटिफाई पे भी जाके फॉलो कर लो. एंजॉय द शो. आई हैव स्टार्टेड रीडिंग एंड बिकॉज ऑफ पॉडकास्ट एंड स्टफ स्टार्टेड टॉकिंग टू ऑल एंटरप्रेन्योर्स. व्हाट्स वन एडवाइस, वन टिप यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब बोल रहे हैं. सो स्लीप को हमने लाइटली लिया, स्लीप को हमने लाइटली लिया, बहुत सारे मल्टीपल मैन क्या है ये स्लीप को लाइटली लिया. बिकॉज वी ऑल सेलिब्रेट हसल कल्चर,
100%
वी स्लीप लाइक प्राइम मिनिस्टर से मैं बहुत कम सोता हूँ, ये सब बोल रहे हैं मैं कम सोता हूँ. एंड देन व्हेन यू इन सब की वजह से मेरी क्यूरियोसिटी जगी, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग एंड स्टार्टेड सीइंग दैट अराउंड द वर्ल्ड हाउ पीपल फ्रॉम यंग एज हु आर स्लीपिंग मोर, उनका ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है, उनकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, वो प्रोडक्टिविटी लेवल्स कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा काम कर पाते हैं. सो आई गॉट एक्साइटेड. And then first rule of an entrepreneur, whatever you can't measure, you can't change.
Correct.
So I was like, let me start measuring. तो measure करने के लिए फिर मैंने ये bands वगैरह सब try करने लगा, कि all rings, ultra human ring try करी, whoop try किया, your Fitbit try किया, सब like started doing all of these and got on this
जर्नी, ट्रैक फॉर अ ईयर, माय एवरेज स्लीप फॉर अ ईयर वाज 4 hours 20-30 minutes. And I felt so bad. I was like, what? What are you saying? And that was the reason why I work out every day. Every day. But no change on body. Recovery zero. Like, I'm not getting fatter. It's just face fat badhte aa raha tha because of stress and belly fat a little bit. But weight overall body ka 1-2 kg zyada nahi badh raha. So I'm not getting fatter. But I'm not building muscle. मैं पूरा एक्साइटेड होने के बाद भी रोज़ सुबह मेरी मॉर्निंग्स इतनी बेकार होती हैं, क्यों उठ नहीं पा रहा हूँ. राइट, शुगर क्रेविंग पीक पे, हर चीज़ शुगर 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 ही खाना है. सो इतनी सारी ये चीज़ें थी एंड ऑल ऑफ दिस जस्ट डिसअपियर्ड व्हेन आई स्टार्टेड स्लीपिंग मोर. लाइक डिसअपियर्ड तो खैर बहुत ज़्यादा बोल दिया, बट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड. मेरी टीम ने बोला कि 2 महीने में बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी में चेंज दिखने लग गया. I was like, मैं पिछले 1.5 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ. बट 2 महीने से आई स्टार्टेड स्लीपिंग मोर, मेरा वर्कआउट, मेरा वेट्स बढ़ गए हैं, मेरे वर्कआउट में स्टैमिना बढ़ गया, एंडोरेंस बढ़ गया. इतना कनेक्टेड है एंड आई वॉन्ट टू पुश मोर, माई ड्राइव हैज गॉन अप.
तो
पर्सनली इट जस्ट हेल्प्स. इट्स क्रेजी. इट्स जस्ट
स्लीप एज एन इमेज इश्यू मैं बोलता हूँ.
क्यों?
We have na, अपने कंट्री में अंडर स्लीप इज सेलिब्रेटेड, राइट? कम टू ऑफिस एंड से मैं 4 बजे तक काम किया, यू हैव गिवन अ पैट इन द बैक, यू कम एंड से मैं 10 घंटा सोया, तो यू आर ब्रांडेड एज लेजी.
या
सो इन इंडिया एंड आई थिंक
ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज द केस,
इमेज इश्यू, राइट? व्हेन आई गो फॉर माई टॉक्स एटसेट्रा, आई टेल पीपल एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु कम टू मी फॉर एडवाइस और कलीग्स हु कम, माय ओनली क्वेश्चन टू देम इज, फर्स्ट फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स. Can you sleep for 8 hours? But otherwise, there is nothing I can do with you on nutrition. I can do nothing on supplements. I can do nothing on exercise. Can you sleep for 8 hours? And trust me, most of them find it very difficult.
Yeah.
The question is because you think sleep is unproductive. That's how the society has built this whole culture around sleep, right? Agar aap anything living dekhte hai world mein, from plants to animals to ocean life to humans, every living thing sleeps. I am a very big learner of evolution. Everything in evolution happens for a reason, okay. Right? Billions of years of evolution, Mother Nature has kept sleep constant, right? मैं और आप तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं. जस्ट गो बैक 1000 years, 2000 years बैक. हंटर गैदरर की सोसाइटी थी, जंगल्स थे, हमारे एंसेस्टर्स, वो लोग को भी रात को 8 घंटा कोई चॉइस ही नहीं थी, सोनी पड़ती थी, बिकॉज मदर नेचर सुला देता है आपको. ये रात को जब आप सोने जाते हो, चांसेस है कोई आपको आके खा जाएगा. उस टाइम में आपके खाली 2 ही काम था, एक काम था खाना खोजना और खाना, और दूसरा था प्रोड्यूस करना, राइट? आप सोते हो तो ना आप खाना खोज रहे हो ना आप सेक्स कर रहे हो, मदर नेचर आपको सुला रहा है. फ्रॉम यू हंटिंग द प्रे यू आर बिकमिंग द प्रे. उसके बावजूद भी इवोल्यूशनरी सब चेंज हुआ. हमारी ब्रेन की साइज इतनी छोटी होती थी, अब इतनी बड़ी हो गई, हमारे जॉस बड़े हो गए, हमारे आर्म्स लेग्स सब इवॉल्व हुए, स्लीप वहीं का वहीं है. इतना बेवकूफ तो मदर नेचर नहीं है कि समथिंग दैट हम मैनकाइंड समझते हैं जो अननेसेसरीली है, उसको बिलियंस ऑफ ईयर से प्रिजर्व किया है, और ऐसा प्रिजर्व किया है कि यार 16 घंटे के बाद स्लीप प्रेशर बढ़ता है और आप सो ही जाते हो. ट्राई करो 2 रात नहीं सोना. सबको पता है आपके गिनीज बुक में 1 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, बाकी सब चीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलेंगे. Somebody who has not slept, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है. गिनीज ने ट्राई किया कि देखते हैं आदमी कितना जग सकता है. सो जब इन्होंने ये ट्राई किया, विदिन 3-4 डेज जो नहीं सोए थे उसमें इतने मेजर मेटाबॉलिक चेंजेस आना शुरू हुए दैट फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू दे हैड टू स्विच ऑफ दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड. वेदर इट वॉज ब्लड प्रेशर, वेदर इट वॉज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, एवरीथिंग वेंट थ्रू द रूफ, एवरी सिंगल मेटाबॉलिक, ये आदमी मर जाएगा. सो नॉर्मली हम लोग ऐसे बात करते हैं ना, सो जा, अरे आई विल स्लीप व्हेन आई डाई. Science says, if you don't sleep, you will die. If you are, आपने बोला आप 4 घंटा सोते थे 1 साल का, नॉर्मली 7 और 9 घंटे के बीच में, ऐसा कोई साइंस नहीं कि 8 ही सोना, बट 7 और 9 के बीच में इज द मिनिमम. अगर आप 6 घंटा से कम सोते हैं, योर चांसेस ऑफ डाइंग फ्रॉम कैंसर गोज अप बाई 300%.
300%.
योर चांसेस ऑफ डाइंग बाई हार्ट अटैक गोज अप बाई 200%. बट वाई? आप वूप से ट्रैक करते हो, मैं भी ट्रैक करता हूं. अब रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है आपकी, आपने चेक किया है कभी?
एचआरवी भी नहीं
है. ओके, एचआरवी नहीं, रेस्टिंग हार्ट रेट, आरएचआर, राइट? मेरी अबाउट 48 है. जब मैं सोता हूं तो मेरी हार्ट रेट 48 है, ठीक है, रात को. जब मैं उठता हूं तो ये हार्ट रेट करीबन 90-95 बीट्स पर मिनट चली जाती है. दोनों में डिफरेंस क्या है 45 और 90 में, कि भाई 90 बीट्स पर मिनट हार्ट पंप कर रहा है या 45 बीट्स पर मिनट हार्ट पंप कर रहा है, मतलब रात को हार्ट आराम कर रहा है. हार्ट अटैक तो कम होंगे ना, हार्ट इज वर्किंग लेस. बिकॉज हार्ट इज वर्किंग लेस, ब्लड फ्लो इज लेसर. सो व्हेन यू मेजर योर ब्लड प्रेशर व्हेन यू आर स्लीपिंग, इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर. If you have a normal blood pressure or lower blood pressure, lower heart rate, your heart is getting stronger, your vessels are getting stronger, obviously you will not die of a heart attack, right? So, हम लोग सोते हैं, जब ये electrodes डाले गए थे and हमको सुलाया गया, जब ये experiments हुए हार्वर्ड में, तो देखा कि हम लोग stages में सोते हैं, right? जब हम लोग सोने जाते हैं तो हम लोग, सो जनरली स्लीप के दो स्टेजेस होते हैं, एक बोलते हैं एनरेम स्लीप और एक बोलते हैं रेम स्लीप. एनरेम इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और दूसरा रैपिड आई मूवमेंट में हम सो रहे हैं लेकिन हमारा आईबॉल हॉरिजॉन्टली मूव करता है. सो जब हम अवेक होते हैं ना तो हमारा जो ब्रेन का जो वेव्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, एकदम वॉलेटाइल, बिकॉज मैं और आप बात कर रहे हैं, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सोच रहे हैं, तो वेरी एक्टिव. जब आप सोते हैं जो फर्स्ट फेज जिसको बोलते हैं लाइट स्लीप, सडनली ये वेव्स एकदम शांत हो जाते हैं, आपको सुलाते हैं. ये लाइट स्लीप का भी अपना एक महत्व है, क्यों नेचर आपको पहले लाइट स्लीप देता है फिर डीप स्लीप में डालता है. एवरी सेकेंड मैं और आप ह्यूमन बींग्स को 11 मिलियन बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आती है. आप मेरे से बात कर रहे हैं, आपका अटेंशन इधर है, लेकिन मेरे कलर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, पीछे का कुछ दिख रहा है. अब पर सेकेंड पूरे दिन में इतनी इंफॉर्मेशन आई. ब्रेन को रात को डिसाइड करना है इसमें से राज के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, राइट? जो अनइंपॉर्टेंट है वो उसको रिसाइकल बिन में डाल देता है. क्यों? क्योंकि अगले दिन मेरे को सोचने के लिए मेरी रैम क्लियर हो जानी चाहिए ब्रेन की, अदरवाइज तो मेरा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा. सो जब हम लाइट स्लीप में होते हैं तो सारी जो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है, आपके ट्रॉमा को इनएक्सेसिबल फोल्डर में डाल देता है ताकि आप उसको एक्सेस नहीं कर सके. ये होता है लाइट स्लीप में, ये ब्रेन का काम है आपके लिए. जैसे ही आप डीप स्लीप में जाते हैं, डीप स्लीप में जैसे ऐसे ऐसे वेव्स दिखेंगे, एकदम ऊपर जा रहा है फिर एकदम नीचे, एज इफ सिम्फनी है, जैसे अपने ओम ओम, इट्स लाइक अ मंत्रा द ब्रेन इज चैंटिंग. बट वो क्या कर रहा है अपने ब्रेन में, आपको पता है हमारा ब्रेन 2% बॉडी वेट है, 2% ऑफ बॉडी वेट इज ब्रेन, बट ये कैलोरीज 20% ऑफ बॉडी की कंज्यूम करता है, इतना एक्टिव ऑर्गन है. आप जब सुबह वॉशरूम में जाते हो जो निकलता है वो 80% कैलोरी है, 20% ब्रेन में, वो ब्रेन कैसे निकालता है, उसको वॉश कैसे करता है?
okay.
इसको एमिलॉइड प्लाक बोलते हैं. ये एमिलॉइड प्लाक जब हम लोग डीप स्लीप में जाते हैं ब्रेन के, जैसे हमारे कोविड के टाइम में वो ट्रक्स निकलती थी ना मच्छर को मारने के लिए और मलेरिया में निकलती है, वैसे ब्रेन व्हीकल्स को भेजता है हमारे नर्व्स और न्यूरॉन्स में कि ये सारा निकालो
निकालो.
अल्जाइमर्स की ब्रेन जब इन्होंने कट की, अल्जाइमर पीपल कांट स्लीप,
ओके,
तो उनकी जब ब्रेन को कट की तो ये एमिलेट प्लाइक बहुत बढ़ गया था. जैसे हार्ट अटैक होता है आर्टरीज में जाते हैं तो आपको प्लाक दिखता है, ये ब्रेन की आर्टरीज का प्लाक. जब हम लोग डीप स्लीप में सोते हैं तो ब्रेन का काम है ये एमिलॉइड प्लाक को क्लीन करना. अगर आप नहीं सोओगे योर चांसेस ऑफ अल्जाइमर गोज अप बाय 500%. राइट?
व्हाट आर यू इवन सेइंग?
ये तो है एनरेम की बात. फिर हम लोग आते हैं रेम स्लीप में.
ओके, बिफोर दैट कैन यू एक्सप्लेन अल्जाइमर? सब लोगों को इजी लैंग्वेज में क्या होता है
अल्जाइमर? वो बीमारी है जब, जैसे मेरी मासी को अभी हुई है, कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता डिमेंशिया और अल्जाइमर में. अब सोचिए,
दोनों सेम है डिमेंशिया और अल्जाइमर की अलग?
डिमेंशिया इज अ स्लाइटली एडवांस स्टेज ऑफ अल्जाइमर.
ओके,
अल्जाइमर में ये होता है कि आपने जो पूरे लाइफ में मेमोरीज बनाई, अब आप उसको याद ही नहीं कर पा रहे हो. मेरा बेस्ट है मेरी डॉटर्स के साथ खेलना है. जस्ट इमेजिन 80 साल का हुआ, ये सब वाइप आउट हो गए. फिर आपको शॉर्ट ब्रेक्स में कुछ याद आएगा, फिर आप भूल जाते हो. ये अल्जाइमर है. इंडिया में तो अभी उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. यूएस में इट इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आफ्टर हार्ट अटैक एंड कैंसर. नंबर 3 इज अल्जाइमर्स.
वो
ऐसे ही नेचर आपको नहीं सुला रहा 8 घंटा मेरे भाई. फिर आप जाते हैं रेम स्लीप में. रेम स्लीप इज रैपिड आई मूवमेंट. आपके आईबॉल्स, दिस इज द टाइम व्हेन यू ड्रीम. ड्रीम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में. पुराने टाइम में जब कोई शेर ने या कोई एनिमल ने आपको काट दिया, आपके हाथ को क्रैश कर दिया, ट्रॉमा हो गया, अगर उस ट्रॉमा से आप बाहर नहीं आओगे तो नेक्स्ट डे आप हंट नहीं कर पाओगे, आपके बच्चे भूखे रहेंगे. तो मैं ट्रॉमा से बाहर कैसे आओ? जब हम लोग सोते और ड्रीम करते हैं तो ब्रेन इस ट्रॉमा को डील करने के लिए आपके साथ ड्रीम प्ले आउट करता है. स्लीप इज मदर नेचर्स वे ऑफ यू एंड आई टू डील विद ट्रॉमा. दैट्स वन पार्ट ऑफ स्लीप. आज हम लोग ने इतनी बात की, कभी आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, आपके हाथ में इतने सवाल हैं, बट आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता. क्या बोलते थे आपके पेरेंट्स, टीचर? स्लीप ओवर इट. कभी सुना है क्यों बोलते थे स्लीप ओवर इट? जब हम सोने जाते हैं, ड्रीम्स में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है. सब आप उठते हैं, सडनली आपके पास आंसर आ गया. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन, ही गॉट द आंसर ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन हिज स्लीप. गूगल, द आइडिया टू बिल्ड गूगल केम टू लैरी पेज इन हिज स्लीप. फ्रैंकेनस्टाइन वॉज रिटन इन स्लीप. ड्रीम का एक, पर आपको कभी आप ड्रीम तो हम सब करते हैं, कभी पता आप ड्रीम एक्ट आउट नहीं कर पाते हो. ड्रीम में मार रहा हूं मैं, पिक्चर देखा है, कभी आप एक्चुअली मार रहे हो. जब आप रेम स्लीप में जाते हो, हमारे यहां की जो स्टेम है बॉडी, आपको गर्दन के नीचे पैरालाइज कर देती है. एवरी सिंगल नाइट बिटवीन 2 and 4 hours यू आर पैरालिटिक इन कोमा.
ओके,
बिकॉज द ब्रेन डजेंट वॉन्ट द बॉडी टू एक्ट आउट द ड्रीम, बट मेंटली यू आर एक्टिंग आउट. सो यू आर डीलिंग विथ वॉट एवर इज ट्रबलिंग यू और वॉट एवर क्रिएटिविटी. सो क्रिएटिविटी, मेमोरी एनहांसमेंट हैपन्स इन रेम स्लीप
व्हाइल यू आर ड्रीमिंग.
अगर स्लीप करेक्ट नहीं है या स्लीप को मैंने फाउंडेशनली सॉल्व नहीं किया, इट डजेंट मैटर आप न्यूट्रिशन पे क्या कर रहे हो, डजेंट मैटर आप एक्सरसाइज पे क्या कर रहे हो, इट विल कम एंड बाइट यू बैक. कभी आपने सोचा आप बहुत ज्यादा जब पुश करते हो, आपने खुद ने बोला राइट, अपन को क्यों क्रेविंग वाले फूड ही खाने का मन करता है? शुगरी फूड, सॉल्टी फूड, चिप्स, कोला, तब ऐसा क्यों नहीं लगता है चलो यार एक रोटी सब्जी खाई जाए?
जब कम सोता हूं तब नहीं लगता है रोटी सब्जी खाने का.
बिकॉज जब आप कम सोते हो, द ब्रेन इज नॉट गेटिंग टाइम टू फंक्शन. सो ब्रेन इज सर्चिंग फॉर दैट नेक्स्ट डोपामिन हिट. वो रोटी सब्जी से नहीं मिलता है, वो अपने को पैलेटेबल, हाईली पैलेटेबल फूड से होता है. दूसरा पॉइंट, जब अपन कम सोते हैं, सो ओके, स्लीप का जब हम लोग साइकिल में सोते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हार्मोन के ऊपर इंपैक्ट करता है. हमारे सेक्स हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन विमेन के है. पीक हार्मोन क्रिएशन हैपेंस इन स्लीप. सो इफ यू आर अंडर स्लीपिंग, व्हाई डू यू बिकम ओबीस और व्हाई योर चांसेस ऑफ गेटिंग ओवरवेट आर हायर? बिकॉज द हार्मोन्स दैट हैव टू प्ले द रोल, हार्मोन्स आर नॉट गेटिंग जनरेटेड. सो अगर मेरा एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ, आपके केस में टेस्टोस्टेरोन कम डेवलप हुआ, तो मसल कहाँ से बनेगा भाई? क्योंकि पीक टेस्टोस्टेरोन, विच इज वाई पीपल हु अंडर स्लीप कांट हैव मोर सेक्स. मेरा तो जो व्हीकल है वो ही नहीं है. लास्ट चीज स्लीप क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइमिंग ऑफ द स्लीप.
ओके,
टाइमिंग का क्या महत्व है? नॉट द नंबर ऑफ आवर्स. टाइमिंग क्या है कि हम लोग सबका स्लीप का क्रोनोटाइप अलग है. ऐसे तो बहुत सारे क्रोनोटाइप, लार्जली तीन क्रोनोटाइप है. एक मॉर्निंग पर्सन होता है, एक इवनिंग पर्सन होता है, और एक जिसको हम लोग इन बिटवीन बोलते हैं. जो मॉर्निंग पर्सन होता है वो 8 बजे शाम रात को सोना प्रेफर करेगा. जो इवनिंग पर्सन है वो रात को 12 बजे करेगा, और इन बिटवीन है वो लगभग 10 बजे करेगा.
इवनिंग पर्सन रात को 12 बजे सो जाएगा.
रात को 12 बजे उसका एडिनोसिन हाई होगा, वो 12 के आसपास उसको नींद आना शुरू होगी.
12:02-3 तक,
12:01-2 व्हाटएवर, राइट. मॉर्निंग पर्सन को 8 और 9 के बीच में आना शुरू होगी. सो 2-3 घंटे का शिफ्ट होता है फ्रॉम मॉर्निंग टू इन बिटवीन, इन बिटवीन टू दिस. ये जेनेटिक है. हमारे बॉडी के अंदर में 9 जीन्स है जो डिसाइड करता है राज मॉर्निंग है, इवनिंग है, या इन बिटवीन है.
ओके,
इसको आप चेंज नहीं कर सकते. ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक स्टडी की थी, ट्राई की, 11 फैक्टर थे, बहुत डिफिकल्ट है चेंज करना. इंपॉर्टेंट है जानना कि आप मॉर्निंग है, इवनिंग है, या इन बिटवीन है.
ये कैसे जान सकते हैं?
बहुत सिंपल है. देर इज अ मॉर्निंग टाइप, मॉर्निंग इवनिंग क्वेश्चन है, MEQ करके कोई भी गूगल करेगा आ जाएगा. 19 क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको देने. कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, अगर आपको 2 घंटा ज़्यादा सोना पड़ेगा तो आप स्ट्रेस लोगे, उसके 19 सिंपल क्वेश्चन के आंसर है वो दोगे, आपको बता देगा मॉर्निंग टाइप है कि इवनिंग टाइप है.
ओके,
प्रॉब्लम यह होता है अगर प्रशांत देसाई फॉर एग्जांपल मॉर्निंग है और मैं अगर इवनिंग की तरह सोने जाता हूँ, विच इज़ नॉट एज पर माई क्रोनोटाइप, देन आई हैव अ प्रॉब्लम, एंड वाइस वर्सा. जब इन्होंने रैंडमाइज स्टडी की थी आदमियों से, एक क्वेश्चन निकाला, इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, 1/3 मॉर्निंग, 1/3 इन बिटवीन, 1/3 इवनिंग. यू नीड टू स्लीप एज पर योर क्रोनोटाइप, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वालिटी स्लीप. और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत झगड़े होते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में. टीनेजर्स डोंट वॉन्ट टू स्लीप एट 10, पेरेंट्स वॉन्ट देम टू स्लीप एट 10. पेरेंट्स आर रॉन्ग, किड्स आर राइट. क्यों? जब अपन बॉर्न होते हैं, इन्फेंट कितने घंटे सोता है? 14, 16, 18, बेचारा सोता ही रहता है, राइट. तब क्यों आपका पेरेंट टीनेज को नहीं बोलता है 18 घंटा सो? क्योंकि हमारी सर्केडियन रिदम विथ अवर बर्थ कीप्स शिफ्टिंग. सो प्री प्यूबर्टी पीपल, किड्स विल स्लीप मोर, 10 hours, 12 hours, तो आराम से सोएंगे. जैसे आप प्यूबर्टी हिट करते हो, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपकी सर्केडियन रिदम शिफ्ट हो जाती है. As somebody who is teen till the age of 30-35, your circadian rhythm has shifted. You will not be able to sleep at the same time as I at 52 will be able to sleep. Because nature has shifted your circadian rhythm, where it's evolutionary, because kids more active, whatever, right? Meri daughter 20 saal ki hai, meri wife always shout karegi ki 10 baj gaye so jao. Wrong. She should sleep as per her circadian rhythm at 12-1 whenever she is comfortable. Important message to my daughter is, if you sleep at 1, please don't wake up before 9. So, main meri wife ko bolta hu ki tu meri beti ko bol rahi ho na 10 baje sone ka. Kal se ek week ke liye tum 1 baje sooge raat ko. Jitna difficult mere liye hai raat ko 1 baje sunna, utna hi difficult hai teenager ke liye 10 baje ya 8 baje sona. जिस दिन ये हम समझ जाएंगे, वी विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम, बिकॉज उनकी पीक प्रोडक्टिविटी रात को होती है. हमको तो सोना है. ये बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग गैप है. जैसे ही आप 35 को क्रॉस करोगे, अगेन आपकी सर्कैडियन रिदम शिव. अब मैं चाहूं तो भी मैं 12 बजे तक नहीं जग सकता हूं. तो स्लीप में इसका भी एक बहुत
इंपॉर्टेंट टाइमिंग का
इंपॉर्टेंट महत्व है.
ओके,
मेरे जो फ्रेंड्स कभी जो जिनको प्रॉब्लम है 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं सोते, मैं उनको बोलता हूं तो सो मत अभी. द बेस्ट वे टू डील विद दिस इज 1 डे पुश योर सेल्फ. 16 घंटा 18 घंटा 20 घंटा मैं काम करूंगा, सोऊंगा नहीं. एडोनिसिन इतना बढ़ेगा कि एक बार आपको सुला देगा, जापान में ये स्टडी हुई थी. तो बच्चे ये नहीं सो पा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने स्लीप प्रेशर बिल्ड करने दिया. पहले दिन 11.5 घंटा सोए, दूसरे दिन 10.5, तीसरे दिन 9.5, चौथे दिन 8, चौथे दिन से लेकर 15 दिन 8 ही घंटा सोए, क्योंकि आपने स्लीप प्रेशर आस्ते आस्ते कम कर दिया. तो अब काम है और आपको करना है, कर लो. मेरा खाली एक ही मैसेज होता है कि यार अल्टीमेटली हम लोग सब प्रायोरिटी एनिमल्स है, राइट? अगर हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है और अगर आप इस तरह से सो रहे हो, वन थिंग इज वेरी क्लियर, एज ऑफ नाउ यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर हेल्थ. चाहे आप कितना क्लीन खा रहे हो, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, जब तक आपका स्लीप का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, इट विल नॉट गिव यू द डिजायर्ड बेनिफिट्स.
सो क्वेश्चन ऑन दिस, इन सब में बीच में हम बात कर रहे थे हार्मोन्स लेवल की, सेक्स लेवल की, ब्रेन डेवलपमेंट की, फैट लॉस की, बहुत सारी हमने बातें करी, राइट? आर यू सेइंग इन, आई एम जस्ट पिकिंग पार्ट्स ऑफ इट, ओके, क्या आप ये बोल रहे हो कि मोस्टली लोग ओबेसिटी के शिकार बन रहे हैं या फैट हो रहे हैं बिकॉज वो सो ढंग से नहीं रहे?
बहुत बड़ा रीज़न है, खाली एक रीज़न तो नहीं हो सकता. ऐसी हमारी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम ऐसी है कि हम लोग को चाहिए मैं हेल्थ को इतना सिंप्लीफाई कर लूँ कि फिर मैं खाली सोने पे करूँ और फिर मैं मोटा नहीं हूँ. नहीं, इट इज़ मल्टीपल, बट इट हैज़ अ डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट. क्यों?
डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट मतलब कितना?
मेजर नहीं हुआ है. क्योंकि सपोज राज ने 4 किलो फैट ऐड किया, अब वो 4 किलो फैट के बिहाइंड में अंडर स्लीप कितना था, न्यूट्रिशन कितना था, इनएक्टिविटी कितनी थी, मैं नहीं मेजर कर सकता हूँ, राइट? तो साइंस के पास उसका आंसर नहीं है. ये आंसर है रैंडमाइज ट्रायल्स में कि यार दो जन की सेम एक्सरसाइज रूटीन थी, सेम न्यूट्रिशन था, एक सो ज़्यादा रहा था, एक कम सो रहा था, जो कम सो रहा था वो ज़्यादा मोटा हुआ. ये साइंस ने किया. बट क्यों होता है? बिकॉज जब आप कम सोते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट करना, आप, मैं तो ये पहनता हूं तो मैं ब्लड ग्लूकोज से करता हूं. अगर आप 6 घंटा सोओगे और आप 8 घंटा सोओगे, आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी को टाइम नहीं मिला वो ग्लूकोज को क्लियर करने के लिए, राइट? तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज
कम सोने में बढ़ जाएगा.
कम सोते हो तो बढ़ जाता है. जब आप कम सोते हुए सोते हो, आपका फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ता है. इट बहुत सिंपल है, इट इज इंपैक्टिंग समथिंग कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस. इट यू आर बींग मेड इंसुलिन रेजिस्टेंट. इट हैज़ ऑल्सो बीन लिंक्ड कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है इन द बॉडी.
इन्फ्लेमेशन क्या होता है? सिंपल
इन्फ्लेमेशन, जब आपको कोई भी वूंड लगती है तो यहाँ फूल जाता है, राइट? आपका फूल क्यों जाता है? मगर इन्फ्लेमेशन आ गया. इन्फ्लेमेशन मतलब कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बॉडी ने सोल्जर्स को भेजे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो ये आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी होती है. कभी आप देखेंगे जब कोविड के, अगर आप डेटा देखेंगे, 85% पीपल हु डाइड हैड वेरी लो इम्यूनिटी. बॉडी डिड नॉट हैव इनफ बी सेल्स एंड टी सेल्स टू फाइट द पैथोजन. Whereas youngsters में डेथ नहीं हुई. क्यों? एल्डर पीपल, बिकॉज एज यू ग्रो ओल्डर योर इम्यूनिटी कम्स डाउन. इम्यूनिटी इज बॉडीज अबिलिटी टू डील विथ आउटसाइड एजेंट्स. जब सोते हैं ये आपकी पूरी इम्यूनिटी सिस्टम को ओवरहॉल करता है, तो नए बी सेल्स बनते हैं, नए टी सेल्स बनते हैं. लेकिन जब आप नहीं सोओगे तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी. जो कम सोते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ये तो फैक्ट है. ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, आपको भूख ज्यादा लगती है. हमारे दो हार्मोन्स होते हैं.
दैट इज सो ट्रू. दैट इज, आई एम जस्ट कटिंग यू ओवर, बट दैट इज सो ट्रू. मेरा, सो आई डिड द टेस्टिंग रिसेंटली, ब्रेन सटाइटी लेवल. तो मेरे ब्रेन, बिकॉज मैं कम सोता था, इसकी वजह से ओवरऑल मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इतना एक्सप्लोर हो चुका है कि मैं जब खाता हूँ तो मेरे ब्रेन को ज़्यादा टाइम में पता ही नहीं चलता है कि मैं फुल हो गया हूँ. दैट्स सटाइटी लेवल, राइट? तो उस मेरा स्कोर इस मतलब -5, दैट इज़ जो टेस्ट था उसमें, दैट इज़ वेरी पुअर. कि मैं खाता हूँ थोड़ी देर में, फिर मुझे 1 घंटे फिर भूख लग जाती. दो, मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, मैं फुल हूँ, लेकिन मेरे ब्रेन को कॉन्स्टेंट लग रहा है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और मैं खाते ही जाता हूँ, खाते ही जाता हूँ.
अगर आप वो टेस्ट को डबल क्लिक करेंगे और ये पढ़ेंगे प्रॉपरली, तो दे वुड हैव मेजर्ड आपका लेप्टिन लेवल्स एंड आपके ग्रेलिन लेवल्स.
ओके,
सो ये हमारे दो हार्मोन्स है जो हमारी हंगर और सेटिएटी. ग्रेलिन इज अ हंगर हार्मोन, लेप्टिन इज अ सेटिएटी हार्मोन्स. जब ग्रेलिन लेवल बढ़ती है आपको इट इंडिकेट्स भूख लगी है. दूसरा आप क्या करते हो जब आपको भूख लगती है, मेरे को पैलेटेबल फूड्स चाहिए. तो
पैलेटेबल फूड्स क्या होते हैं?
पैलेटेबल मतलब चिप्स हो गया, जो हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी चिप्स फटाफट खा सकता हूँ, जूस पी सकता हूँ, कोक पी सकता हूँ, दे आर ऑल पैलेटेबल. प्रोसेस फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड को इज अ बेटर डेफिनेशन. अगेन उसमें वही होता है, ग्लूकोज स्पाइक एंड क्रैश. जब मैंने एक पैकेट चिप्स खाया या एक कोक पी ली तो एक हाई तो मिला, शुगर हाई. नाउ व्हाट हैपेंस इज आपका ब्लड ग्लूकोज एकदम ऊपर चला गया. ब्लड ग्लूकोज ऊपर चला जाता है इज केओस फॉर द फॉर योर बॉडी. वी विल कम टू दैट इन अ मिनट, स्लीप के बाद उस पर बात करेंगे. नाउ बॉडी ने इंसुलिन बनाया ये सारा ब्लड ग्लूकोज को निकालने के लिए, बिकॉज अगर ये ब्लड ग्लूकोज आपके सर्कुलेशन में रहा देन तो केओस. तो फट से वो निकाले, आप यंग हो तो और इंसुलिन आ रहा है, जूम करके क्रैश हो गया. क्रैश होने का मतलब वापिस भूख लगी है. तो जब आप शुगरी फूड्स खाते हैं, बच्चों में क्यों होता है, एक शुगर हाई आता है फिर क्रैश होता है, एग्जैक्टली द सेम रीजन. वी हैव टू अवॉइड शुगर, जिसको हम लोग रोलर कोस्टर बोलते हैं. आई एम ऑन टू मील्स अ डे, मैं दो बार खाता हूँ, 2 बजे खाता हूँ, 8 बजे खाता हूँ. तो मैंने एक बार खाया, मेरा शुगर बढ़ा, अब मैं सीधा 8 बजे, मेरे को 2 रोलर कोस्टर चाहिए. आज के दिन में ऑन एवरेज इंडियन को 8 रोलर कोस्टर होते हैं.
Which is bad.
It's not bad. Then? It is pathetic. तो ये जो ग्लूकोज बढ़े जा रहा है, जब ये क्रैश हो रहा है तो कहीं तो जा रहा है ये ग्लूकोज. ये अल्टीमेटली आपके फैट सेल्स में ही जा रहा है अगर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो. हमारे फैट की एक कैपेसिटी है, फैट को आप समझ लो एक बाथ टब की तरह, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, राइट? सबसे पहले हमारे बॉडी में फैट जरूरी है, इसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, विच इज नेसेसरी फॉर द बॉडी. तो पहले ये फैट सेल्स में डालते जाता है. तो जब तक ये स्किन के ऊपर का फैट है आई एम ओके, इट डजंट कॉज एनी हैवॉक. यू मे लुक फैट बट मेटाबॉलिकली यू आर स्टिल हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट या अब क्या ये सबकी बाथटब की कैपेसिटी अलग होती है. पतले की एकदम कम होती है, आपके वो न्यूट्रिशन कोच आए थे वो पतले, तो उनकी बाथटब की कैपेसिटी, मैं थोड़ा मेरी बड़ी है, मोटे की और बड़ी होगी. तो सबकी बाथटब की कैपेसिटी अलग है. तो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, कितनी बड़ी बाथटब की कैपेसिटी और कितना पानी चालू किया है. पानी चालू करना तो आपके हाथ में, कोक बिस्किट पिज्ज़ा ब्रेड व्हाटएवर, राइट? अगर आपका बाथटब छोटा है तो आपके फैट सेल भर गए, फिर पानी ओवरफ्लो शुरू होना, तो आपके फैट सेल स्टार्ट लीकिंग फैट. जब ये फैट लीक करता है तो ये आपके ऑर्गन्स के पास जाता है. सबसे पहला लिवर के ऑर्गन्स में जाएगा, फिर मसल में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा, फिर पैंक्रियाज में जाएगा. इसको हम लोग विसरल एडिपोसिटी बोलते हैं. फैट लीकेज इज अ बिग इश्यू बिकॉज योर ऑर्गन्स आर गेटिंग स्लोअर एंड स्लोअर. फैट इज कवर्ड देम. अब आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. एल्कोहलिक को लिवर डिजीज क्यों होता है? एल्कोहल, एल्कोहल में इथेनॉल होता है. इथेनॉल इज मेटाबोलाइज्ड बाय योर लिवर, योर स्टमक कांट मेटाबोलाइज इट, ठीक है? मेथनॉल अपने लिवर में गए, वही चीज हुआ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, एक ड्रिंक दो ड्रिंक तीन ड्रिंक, कितना लिवर फैट बन गया. तो इसको एल्कोहलिक लिवर डिजीज बोलते हैं. और पीओ इसका सेकेंड स्टेज हो जाता है नैश. उसका थर्ड स्टेज होता है लिवर सिरोसिस. उसके बाद आपको लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए. 1980s तक एवरीथिंग वॉज गुड. 1980s में दे स्टार्टेड सडनली सीइंग कि ये जो नॉन एल्कोहलिक लिवर है ना, ये किड्स में देखा गया.
नॉन एल्कोहलिक
जो लिवर फैट है, लिवर फैट तो लिवर फैट है, ये पहले खाली एल्कोहलिक्स में दिखता था. 80s के बाद बच्चों में देखा गया है,
जो कभी नहीं पीते उनके बाद भी.
सर बच्चा दारू कहां से पी रहा है, लेकिन लिवर फैट है. एक यूनिक डिस्कवरी हुई कि यार बच्चों को इन डिजीज को इन्होंने नाम दिया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. ओनली लार्जली सीन इन किड्स हु डोंट ड्रिंक.
आई हैव नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड आई डोंट ड्रिंक.
व्हाई? उसको डिकोड करते हैं अब आपके सामने, तो चलिए मिस्ट्री सॉल्व करते हैं. एवरी टाइम यू विल ईट फ्रक्टोज विच इज शुगर इन व्हाटएवर फॉर्म, वेदर इट इज फ्रूट जूस. इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रूट जूस इज बैड, फ्रूट जूस इज नॉट हेल्दी. because that is a liquid fructose. It will immediately get absorbed. And फिर उसके पास choice ही नहीं है, liver के पास choice ही नहीं, उसको convert ही करना है fat में. इसलिए kids में दिखने लगा. क्या खाते हैं kids breakfast में? Toast, sugar, cornflakes, sugar, fruit juice, sugar. तो ये सब kids में भी वही convert हो रहा
है. Wow. Because I used to eat a lot of junk food. And every morning I would drink orange juice. The first thing in morning I would do is orange juice. For years. And that's the reason for fatty liver.
And I'm very harsh. मेरे को बहुत जन पूछते हैं, अरे मेरी ग्रैंड मॉम चीनी खाती थी. ओके, मैं सिलेक्टिवली ग्रैंड मॉम को मत ले यार. कितना चीनी खाती थी ग्रैंड मॉम? सुबह चाय में तेरी तरह टोस्ट खाती थी, फ्रूट जूस पीती थी. उस टाइम में सो 1700s शुगर और ये जो अपने डिजीज की बात करें, वर ओनली सीन इन सुपर रिच पीपल इंक्लूडिंग पोप्स एंड किंग्स, बिकॉज वो लोग ही शुगर अफोर्ड कर पाते थे. शुगर वॉज स्केर्स, वेरी एक्सपेंसिव. इन 1900 दिस बिकेम अ डिजीज ऑफ द मासेस एज शुगर प्राइसेस केम डाउन. सम स्टैटिस्टिक्स, 1940 वन आउट ऑफ 400 पीपल हैड डायबिटीज.
1940 वन आउट ऑफ 4 पीपल हैड
400 पीपल
400 ओके.
1970 वन आउट ऑफ 40, टुडे वन आउट ऑफ 3.
व्हाट आर यू सेइंग? वन आउट ऑफ 3 पीपल हैव डायबिटीज
इन इंडिया. इंडिया हैज 400 मिलियन प्री एंड डायबिटिक्स एज पर द ICMR रिपोर्ट ऑफ जून 2023. एंड दीज आर इन पीपल हु गेट देम टेस्टेड.
सो मेनी वर प्रॉब्ली प्री डायबिटिक, नॉट इवन गेटिंग टेस्टेड.
मैं सिंगापुर था, हमारी एवरस्टोन इज हेडक्वार्टर्ड इन सिंगापुर, राइट? एंड आई लाइक टू लर्न. आपने ब्लू जोन्स का नाम सुना होगा, राइट? डैन ब्यूटनर का काम, ही आइडेंटिफाइड 6 जोन्स इन द वर्ल्ड वेर which has the highest number of centenarians.
मतलब
people who live more than 100 years.
अच्छा.
तो ये सब जगह गया, सार्डिना हुआ, ग्रीस में हुआ, इटली में हुआ, जापान में ओकिनावा हुआ, and started understanding these communities. He's a very famous Net Geo documentary on blue zones. Netflix में भी अभी आ गई थी. And started taking out, भाई इसमें commonality है, and सब में commonality निकली. The latest blue zone to be added was Singapore, right? Singapore has the highest life expectancy today, 85 years. India is at 69 years. मैं सिंगापुर में था तो उसके ऊपर और थोड़ा स्टडी करने की ट्राई की है. तो मैं सिंगापुर में गया यार, हर एक जगह इंक्लूडिंग स्टारबक्स, वहाँ पर हर एक ड्रिंक के नीचे ABCD कुछ लिखा हुआ है, एंड न्यूट्री लेबल. तो क्यूरियोसिटी, तो और थोड़ा स्टडी किया. सो सिंगापुर टुडे हैज 400,000 डायबिटीज, डायबिटिक पीपल. They feel that by 2050, they will have 1 million diabetic. Why is this a problem for them? When they looked at medical records, 70% of people who had kidney failure were diabetics. Okay? 50% people who died of heart attack and stroke were diabetic. 90% people who had a lower limb amputation were diabetic. They realized that diabetes has a disproportionate impact on lifespan and on health span both. And iska culprit liquid sugar. So they declared a war on
liquid sugar.
So, आज सिंगापुर में आप कहीं भी जाओगे, सो दे हैव ब्रांडेड दिस ABCD कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इज द लिक्विड शुगर. दे फर्स्ट स्टार्टेड विद पैकेज ड्रिंक, नाउ एवरी सिंगल कॉफी शॉप ऑल्सो हैज टू डिस्क्लोज, राइट? इफ यू आर CND विच इज मोर देन 5% एंड मोर देन 10% शुगर, देन इट हैज टू कम ऑन द फ्रंट ऑफ द लेबल, इट कांट बी बिहाइंड द लेबल. इफ यू आर D, यू कांट एडवर्टाइज. मैं स्टारबक्स में जाके मैंने देखा, every single drink was either a C or a D. The only drink which had A was black coffee. अपना तो आदत है, पूछो सो मैं एवरस्टोन रन सबवे इन इंडिया, सो सबवे के थ्रू कनेक्ट निकला स्टारबक्स, वन ऑफ द मोर फेमस ड्रिंक्स इन इंडिया, जावा चिप फ्रेपेचिनो, टॉल जावा चिप फ्रेपेचिनो हैज 59 ग्राम्स ऑफ शुगर, ओके, विच इज 15 टीस्पून्स ऑफ शुगर,
15 चम्मच
एक जावा चिप फ्रेपेचिनो में,
एक कॉफी के ग्लास में.
मैंने वहां की कोक और हमारी कोक कंपेयर की, सेम कोक सब जगह बना रही है. सिंगापुर में वो जो कोक का कैन बेचते हैं उसमें 11 ग्राम शुगर, इंडिया में जो बेचते हैं उसमें 29 ग्राम शुगर, 2.3 टाइम्स मोर शुगर इन इंडिया.
बट इफ इट्स अ थिंग व्हाई नॉट दे डू इट अराउंड द वर्ल्ड, हर कंट्री में 11 ग्राम क्यों नहीं बेचते,
क्यों करेंगे,
क्यों?
जितना ज्यादा शुगर उतना ज्यादा एडिक्टिव. मैं आपके पास 15 ग्राम चीनी रखता हूँ, 15 चम्मच चीनी रखता हूँ और जावा चिप फ्रेपचिनो रखता हूँ, दोनों चीनी है, अब क्या लोगे?
फ्रेपचिनो.
शुगर इन इटसेल्फ इज नॉट एडिक्टिव, व्हेन शुगर इज पुट इन सब्सटेंसेस इट बिकम्स एडिक्टिव. कोक क्यों करेगा ना भाई.
Okay, talking about diabetes, I have more questions on this. One of my big problems, जब मैंने actually इतनी research करने के बाद फिर ये check करने का कि साल भर में 4 घंटे सो रहा हूँ, सब किया, all that, जिस दिन में ज़्यादा सो रहा हूँ, productivity, all of that aside, मेरा big change कि मैं अब सोऊंगा ज़्यादा, health ज़्यादा, help, खुद की health पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, was I read a research कि जो लोग कम सोते हैं उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं.
करेक्ट.
इज दैट ट्रू?
100%.
तो कम सोने से डायबिटीज़ हो सकती है, कम सोने से कैंसर हो सकता है.
कम सोने से डायबिटीज़ होने के चांसेस
बढ़ जाते हैं.
कंपेयर टू अ पर्सन हू स्लीपिंग 8 आवर्स वर्सेज अ गाय हू स्लीपिंग 6 आवर्स, द गाय हू स्लीपिंग 6 आवर्स विल हैव 3 times मोर चांसेस ऑफ बिकमिंग डायबिटिक फास्टर देन अ गाय हू इज हियर.
एंड जिनको डायबिटीज़ ऑलरेडी, अगर वो कम सो रहे हैं तो
सोने पे सोआ होगा, जल्दी मरेंगे और क्या. डायबिटीज इज द, इट्स नॉट अ कंडीशन, ये समझना जरूरी है, वो डिजीज है, इट इज द लास्ट स्टॉप. ओके, लेट्स टेक अ स्टेप बैक. व्हाट आर द 4 बिग किलर्स इन द वर्ल्ड? नंबर 1 हार्ट अटैक, नंबर 2 रेस्पिरेटरी डिजीज, नंबर 3 कैंसर, नंबर 4 अल्जाइमर, राइट? डायबिटीज इज द लास्ट स्टॉप, उसके बाद ये ट्रेन की ब्रेक फेल हो जाती है और एक्सीलरेटर फुल स्पीड. योर चॉइस वेदर योर नेक्स्ट स्टेशन इज गोइंग टू बी हार्ट अटैक, वेदर इट्स गोइंग टू बी स्ट्रोक, वेदर इट्स गोइंग टू बी कैंसर, वेदर इट्स गोइंग टू बी रेस्पिरेटरी और अल्जाइमर. अल्जाइमर इज टूडे कॉल्ड Type 3 डायबिटीज. अभी आपने बहुत सुना होगा 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक,
18 साल में आ गया हार्ट अटैक.
Okay, so now this is the world of atherosclerosis. You must know.
क्या होता है?
Atherosclerosis is heart attack and stroke. Whatever is good for your heart is good for your brain. जो यही vessel फिर ऊपर brain में देती है. Stroke is nothing but the clot in the brain. Clot in the heart is heart attack. Very simple reductive explanation, right?
Stroke is clot in the brain.
In the vessels of the brain. This is in the vessels of the heart. मैकेनिज्म इज द सेम.
ओके,
उसको नोमेनक्लेचर वाइज स्ट्रोक बोलते हैं, इसको इस्कीमिया बोलते हैं या हार्ट अटैक. वियतनाम से जब सोल्जर्स वापस आ रहे थे वर्ल्ड वॉर 1 से यूएस में, जब सोल्जर्स टीनेज गाइस वर किल्ड, राइट, उनका ऑटोप्सी किया गया. उसके ऑटोप्सी में ऑलरेडी इन्होंने प्लाक फॉर्मेशन देखा
जो वर्ल्ड वॉर से वापस आ रहे थे.
हार्ट का जो डिसीज है जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ये आपके टीन्स में शुरू हो जाते. मेरी डॉक्टर को भी आज 20 साल की है, मैं अंदर में कैल्शियम एनजियो सीटी स्कैन करूंगा या सीटी एनजियो करूंगा, प्लाक बिल्डअप हो शुरू हो गया हम लोग सब में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको डेकेड्स लगते हैं टू मैनिफेस्ट. 20, 30, 40, 50, 60 साल लगते हैं टू कंपाउंडिंग, राइट? 7% ऑफ द डेथ इन 15 to 24 is because of heart attacks. 93% is for accidents and उस age में और कुछ नहीं होता, but 7% इससे मरते हैं.
But क्यों मरते, कैसे मरते हैं?
एथेरोस्क्लेरोसिस है इसमें और एक
component. इतने टाइम से डेकेड लगते हैं अगर उसको बनने में, तो 18 साल में कैसे हो गया?
दो रीजन, अगर मैंने बहुत ज्यादा बॉडी को डैमेज किया तो. दूसरा एक हमारा जेनेटिक म्यूटेशन है जिससे आपका एक, जैसे एपो बी पार्टिकल है, एपो ए है, वैसे एक एल पी लिटिल ए आता है, लिपोप्रोटीन स्मॉल ए.
ओके,
वो जेनेटिक होता है. लिपोप्रोटीन जेनेटिक एल पी लिटिल ए ऑल्सो कॉजेज एथेरोस्क्लेरोसिस. सो सम ऑफ दीज डेथ्स, मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स आर बिकॉज ऑफ एल पी लिटिल ए.
जेनेटिकली
देर इज सम एलिमेंट ऑफ जेनेटिक, मेजोरिटी इज जेनेटिक, लिटिल बिट ऑफ दैट इज
लाइफ
स्टाइल. 25 to 34 के एज में जाते हैं, दैट 7% बिकम्स 15%. ठीक है,
हार्ट अटैक.
35 के ऊपर आप जाते हैं, इट गोज टू 30%. राइट, सो फर्स्ट थिंग इज, इट इज नॉट अ डिजीज दैट सडनली शोज अप इन योर 60s or 50s or 70s. इट इज अ प्रोसेस दैट हैज स्टार्टेड अर्ली ऑन. राइट, इट टेक डेकेड्स टू मैनिफेस्ट. इट इज कंप्लीटली अ लाइफस्टाइल डिजीज अनलेस यू हैव एलपी लिटिल ए. जिसकी भी जेनेटिक टेस्टिंग है एक ही बार करानी पड़ती है, वो एपो बी के साथ इसकी भी टेस्टिंग होती है. इफ आई एम द प्रॉब्लम विथ हार्ट अटैक इज बिकॉज ऑफ द डेटा, वी स्टार्ट लुकिंग एट हार्ट डिजीज एज अ डिजीज ऑफ लेटर ईयर्स. वी डोंट रियलाइज दैट इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड अपॉन टूडे. बिकॉज इफ आई नो टूडे, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे. नो द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूप इज वेन द सन इज शाइनिंग. बट यह तो पता ही नहीं है धूप है कि बाव है, तो देखा ही नहीं हूं मैं, तो विंडो के बाहर ही नहीं जा कर रहा हूं. राइट, that narrative needs to change. You need to measure. Teesra hai yaar, as your, in any disease in the world, your sabse biggest risk is age. That you have to understand. I have a higher all-cause mortality to you because I am 52. I have to understand that. So if at 52 I have to do something, I have to do more than you. You have to understand that you can't start saving for retirement at age of 60. You will create incredible wealth when you start investing at 25. It's the same with wealth. Today's habits will give you exceptional returns as you move forward. But our medical world only looks at a 5-year, 10-year risk. At 35, your 10-year risk of dying from a heart attack is negligible. Main fir measure hi kyun karu? But if heart attack takes 30, 40 years to develop, I want to assess your next 30-year risk today. That is a problem with what I call medicine 2.0 today. I will wait for the symptom to happen. क्या यूनिक हमारी मेडिकल सिस्टम है ना. आपने ब्लड रिपोर्ट कराया ब्लड ग्लूकोज के लिए, आपका ब्लड ग्लूकोज हेमोग्लोबिन H1BC आया 6.5, नॉर्मल दिखेगा. एट 6.6 यू आर डायबिटिक. आई हैव टू टेक प्रिकॉशन व्हेन यू आर एट 5.7, नॉट व्हेन यू आर एट 6.5. बट हमारा सिस्टम है ना, आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब कोई प्रॉब्लम हो. डॉक्टर भी वही करता है, सिम्टम को ट्रीट करो. तो और एक स्टेटिस्टिक देता हूं, लास्ट पिछले 70-80 साल में अवर लाइफ स्पैन इन इंडिया हैज ऑलमोस्ट डबल्ड. 35 साल से 70 साल तक पहुंच गए. रिमार्केबल अचीवमेंट. अ लॉट ऑफ दिस हैज टू डू विद 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स. ठीक है, जैसे इन्फेक्शन कम हो गए, डेथ्स कम हो गए, बिकॉज तब मरते थे इन्फेक्शन या इंजरी से. राइट, सैनिटाइजेशन आ गया, लाइफ स्पैन इंक्रीज्ड. ऑल्सो मेडिकल डिड अ लॉट ऑफ वर्क, दवाइयां बनी, सर्जरीज आई, हॉस्पिटल्स बनी. इफ आई टेक आउट ऑल दिस, राइट, कि भाई अगर सपोज आज भी आदमी इन्फेक्शन से मरता, अगर मैं इन्फेक्शन वाले जो डेथ्स पहले होते थे उसकी इसको रिस्क एडजस्ट करूं, there has been no increase in lifespan. 1 in 800 people died 100 years back, 1 in 800 people died today. The problem is, today, उस टाइम में डायबिटीज नहीं था, हार्ट अटैक नहीं था, स्ट्रोक नहीं था, कैंसर नहीं था,
इन्फेक्शंस थे.
आज ये सब था. These are all diseases of civilization. Unlike cancer, for which we know very little, despite spending over $500 billion on cancer, luckily, on atherosclerosis or heart attack, we know almost everything. How it start, what causes it, what accelerates it. It is completely in your control. I told you, right, I lost my father to a heart ailment at 37. I lost my closest friend, my brother, at the age of 35. Both because of heart issues. I want to live longer for my daughters. मेरे पास choice ही नहीं था इस disease को घोल के पी जाना, क्योंकि I still know I will die of a heart disease. My risk is highest for heart. But I don't want to die at 65. I want to die at 85 or 90. I will have to do more work today. Which is why first thing I tell all my friends को मैंने कराया, मेरे सारे family members को, आपको भी बोल रहा हूँ करना, आपके listeners को भी बोलता हूँ. Take your biggest weapon is knowing your family medical history.
क्या
Go one level up. Father, mother, siblings of father, siblings of mother. How did they die? If they are in that age, go one level further. Grandfather from father side, grandmother, grandparents from father side, grandmothers, and if they have siblings, and if you can, how did they die? If you see trends of a particular disease, you know for that disease you are at higher risk, you will have to do more work. It should be your starting point. अपने घर में क्या है वो तो पता चले. मेरे को पता चले कि मेरे फैमिली में मेरे सबसे एल्डेस्ट
कैसे पता चलेगा, ये सिर्फ जस्ट क्वेश्चन
है, फोन करके पूछने का है.
मैं बताता हूँ मेरी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा. माय फादर इज डायबिटिक, इंसुलिन
रेजिस्टेंट, या
ठीक है, तो उनको दोनों टाइम इंजेक्शन लगती है. माय ग्रैंड मदर डायबिटिक, माय बुआ डायबिटिक, माय अंकल डायबिटिक, ना माय मॉम प्री डायबिटिक. एंड आई वाज लाइक सबको डायबिटीज़ हो रहा है. मैं गया मेरे डैड के साथ उनके डायबिटीज़ वाले डॉक्टर के पास. उन्होंने बहुत जोकिंगली बचपन, अरे मैं क्या सैंडविच खाते जा रहा था, छोटा ही था, बड़े जोकिंगली बोल दिया कि ये सब मत खाओ, तुमको तो डायबिटीज़ होनी ही है, डिले कर दो कम से कम. बट लाइक ब्लैंकेट स्टेटमेंट एज अग तुम्हें होनी है, तुम दूर हो जाता था ओके दिस इज डायबिटीज़ का. देन माय मदर्स मदर, माय नानी डाइड आउट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. माय मॉम्स फादर डाइड आउट ऑफ हार्ट अटैक. सो द एवरीथिंग स्टार्टेड, ये सब जब ये मेडिकल हिस्ट्रीज और जब मैं मेडिकल मेडिसिन और इन सब के बारे में, हेल्थ के बारे में जब पढ़ने लगा और समझने लगा, ये सारी चीज़ें जो बहुत पता थी, बहुत कैजुअली कभी ध्यान भी नहीं, ये हॉन्ट करने लग गई. क्योंकि वो डॉक्टर का स्टेटमेंट, घर में हिस्ट्री, सबके घर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ऑल ऑफ दैट, एवरीबडी हैज़ ब्लड प्रेशर, एवरीबडी इज़ डायबिटिक, तो इतने सारा वो इशूज, ऐसा डर लगने लगे कि ओके वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. तो यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि अब जैसे सबका आपने बता दिया घर में कि सबसे पूछो किसकी डेथ कैसे हुई है या घर में फैमिली हिस्ट्री क्या है. तो जैसे पकड़ लेते हैं, अगर 1 out of 3 लोग डायबिटिक हैं, तो मोस्टली आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी देख रहे होंगे, उन सबके आसपास कहीं ना कहीं डायबिटीज़ या हार्ट हेल्थ की
एवरी थर्ड पर्सन इज
एवरी थर्ड पर्सन राइट उनको होगी. तो अब अगर मुझे पता चल गई कि अब मेरे घर में डायबिटीज़ का ये प्रॉब्लम है, तो अब क्या करना चाहिए?
द बेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट न्यूज इज दैट इट इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल. राइट,
डायबिटीज इज रिवर्सिबल. ओके, डायबिटीज रिवर्सिबल कैसे? इंजेक्शन वाली भी?
दो चीज आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगेन एज आई सेड, योर बिगेस्ट एनिमी इज योर एज. राइट, इफ यू आर इन अ सर्टन पार्ट ऑफ एन एज, देन इट इज नॉट रिवर्सिबल. एट योर एज इजीली रिवर्सिबल.
जैसे,
सो यू हैव टू थिंग्स यू विल नीड टू,
व्हिच एज, सॉरी, व्हिच इज इट लाइक
30, 35, 40, इजीली रिवर्सिबल. आई थिंक इवन एट माय एज आई कैन रिवर्स इट. राइट,
सो पोस्ट, यू थिंक यू आर सेइंग 55, 60 इज,
देयर इज नो डेटा टू प्रूव एट व्हाट एज, बट
इट इज मोर डिफिकल्ट.
आई एम सेइंग गुड न्यूज इज two things, right? It can be reversible or you can ensure that it doesn't increase.
Okay.
Right? That's in your control. Three things to know. One thing to know that at some point of time, you will have to take help of medication.
Right? Okay.
Depending on the severity. The medication, I'm not talking about putting injection, but if your blood glucose levels are rising, हमारा अगेन वही प्रॉब्लम है. डॉक्टर आपका ब्लड ग्लूकोज चेक करेगा, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, लेकिन फास्टिंग इंसुलिन नहीं चेक करेगा. डायबिटीज हैपेंस बिकॉज यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट. योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओबेसिटी ऑफ डायबिटीज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. यू कैन गेट अ सिग्नल वेदर यू आर प्री और यू विल बी प्री डायबिटिक 10 years in advance.
कैसे दिखता है ये सिग्नल?
टेस्ट योर फास्टिंग इंसुलिन ना, सेम ब्लड रिपोर्ट वेर यू गो यू गेट योर फास्टिंग।
और फास्टिंग पे प्री डायबिटिक होता है, फास्टिंग ग्लूकोज कितना
लेवल्स। एंड अगेन वहां पर भी मेरा प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी, मेरे पास प्रॉब्लम ही है ये मेडिकल सिस्टम के लिए, बिकॉज जब भी आप ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करने जाओगे आप देखते हो ये कंट्रोल में है कि नहीं। ये जो आप राइट कॉलम देखते हो वो एवरेज वाली कॉलम है, वो एवरेज हैज बीन कैलकुलेटेड बेसिस देयर कोहोर्ट, राइट। बहुत ज्यादा डायबिटिक हो रहे तो एवरेज नीचे गिरती जाएगी, विच मीन्स डिस्पाइट यू हैविंग हायर ब्लड ग्लूकोज यू आर स्टिल नॉर्मल एंड यू गो बैक योर डॉक्टर और यू ऑल्सो वेरी हैप्पी।
तो
सो सॉरी आई जस्ट आई एम सेइंग इफ यू आर सीरियस अबाउट इट यू से आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट नॉर्मल लेवल्स, आई वॉन्ट टू लुक एट ऑप्टिमल लेवल्स। सो आई वॉन्ट माई फास्टिंग इंसुलिन बिलो सेवन,
बिलो सेवन
आई वॉन्ट माई फास्टिंग ग्लूकोज बिलो 90, राइट। आई विल टेस्ट फॉर माई इंसुलिन बट आई विल यूज अ टेस्ट कॉल्ड OGTT, इट्स कॉल्ड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अभी मेरे एक फ्रेंड का रिपोर्ट आया, सब कुछ नॉर्मल था, फिर उसके साथ OGTT किया, पता चला वो सीवियरली इंसुलिन रेजिस्टेंट, ब्लड रिपोर्ट में दिखाई नहीं।
कैसे दिखाते हैं?
वॉट इज OGTT फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? तो यू मेजर योर ब्लड ग्लूकोज एंड योर इंसुलिन एवरी 30 मिनट्स। सो आप आए मेरे पास, मैं आपको 75 grams ऑफ प्योर ग्लूकोज पिलाऊंगा, द मोस्ट यक्की ड्रिंक इन द वर्ल्ड, राइट। फिर आपका मैं 30 मिनट के बाद ग्लूकोज मेजर करूंगा, इंसुलिन मेजर करूंगा, 60 मिनट्स के बाद, 90 मिनट्स के बाद और 120 मिनट, दो घंटे की है, चार बार आपका ब्लड लूंगा। इफ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट और यू आर शोइंग साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंट, योर इंसुलिन विल रेज वेरी फास्ट एंड रिमेन एलिवेटेड। उसको बहुत टाइम लगेगा, मींस कि उसको और मेहनत करनी पड़ रही है टू गेट द ग्लूकोज इनटू द थ्री थिंग्स वी सेड, या तो ग्लाइकोजन, या तो फैट सेल्स में, या तो लिवर या मसल या उसमें, राइट। वो बहुत मेहनत कर रहा है। सो इसके लेवल्स है, विद इन 30 मिनट्स आई वांट योर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टू बी बिलो 140, आफ्टर 60 मिनट्स बिलो 120, आफ्टर 90 मिनट्स बिलो 100। With that test, you know where you are on insulin. But हमारे डॉक्टर तो कराते ही नहीं है ये टेस्ट।
मैंने सुना ही नहीं है कभी।
Correct. अब सोचो, do you understand why does insulin resistance happen? And you have three weapons to deal with this. Insulin resistance, we declared कि यार, when you have more blood glucose in the system, pancreas has to release. You keep feeding more blood glucose, pancreas keep releasing. After a point, pancreas will get tired. दे विल से कि बॉस ये तो यार राज को तो अक्कल ही नहीं, खिलाते ही जा रहा है। उसको इंसुलिन रेजिस्टेंट बोलते हैं। योर पैंक्रियाज आर नाउ नॉट बीइंग एबल टू गिव, विच इज व्हाई यू गिव एक्सटर्नल इंसुलिन, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज यू कैन करेक्ट योर न्यूट्रिशन, एंड उसमें क्या करना है वो रॉकेट साइंस नहीं है यार। रिफाइंड कार्ब्स कम खाने, मैदा कम खाना है, रोटी राइस कम खाना है, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है, प्रोटीन ज़्यादा खाना है। द मोमेंट आप ये करोगे, जस्ट द मोमेंट यू एड मोर प्रोटीन टू योर फूड, यू आर मोर सेटिएटेड, यू विल नॉट फील लाइक
प्रोटीन शेक्स पी सको,
प्रोटीन शेक पी सको, आप पनीर खा लो, अगर नॉन वेज है तो एग्स खाओ। प्रोटीन का भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, वन अनलाइक कार्ब्स एंड अनलाइक फैट, प्रोटीन इज नॉट वन थिंग। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ 20 एमिनो एसिड्स, थिंक ऑफ एमिनो एसिड्स, इसमें 11 नॉन एसेंशियल है, 9 एसेंशियल है। जो 11 नॉन एसेंशियल बॉडी खुद बनाता है वो राज के ऊपर, आई कांट डिपेंड। 9 हमको खाने से मिलते हैं, तो ये 11 और 9 एमिनो एसिड्स है। थिंक ऑफ देम लाइक अल्फाबेट्स, ABCDEFG 20 है। प्रोटीन्स आर एक्चुअली वर्ड्स मेड फ्रॉम दिस अल्फाबेट्स। सम प्रोटीन कुड हैव 5 एमिनो एसिड्स, सम कुड हैव 1000 एमिनो एसिड्स। एवरी फूड हैज डिफरेंट एमिनो एसिड प्रोफाइल्स, राइट। तो जस्ट बिकॉज आप सपोज आपकी रिक्वायरमेंट, आई रेकमेंड पीपल टू हैव एटलीस्ट 1.5 grams ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। आपका 70 है, मेरा भी 78, तो अपने को रफली 100 grams तो प्रोटीन चाहिए।
ओके,
मैं 3 स्कूप प्रोटीन शेक लूंगा, मेरे को 100 grams मिल गया, बट मेरे को प्रोटीन नहीं मिला। प्रोटीन मिल गया बट एमिनो एसिड प्रोफाइल डिफरेंट थी। मेरे को प्रोटीन शेक की एमिनो एसिड प्रोफाइल्स मिल गई, मेरे कुछ अलग एमिनो एसिड्स है वो नहीं मिले। Now, all the excess protein that you take today, if your body cannot use, it will get secreted out. Protein cannot be stored, right? So, what happens to get your adequate protein? You have to eat diverse diet. वेजिटेबल्स में प्रोटीन है, नट्स में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है, पल्सेस में प्रोटीन है, प्रोटीन शेक में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है, मीट में प्रोटीन है. इफ़ आई एम ईटिंग अ डाइवर्स, आई एम गेटिंग ऑल एमिनो एसिड्स दैट माई बॉडी नीड्स. बट द मोमेंट ओके प्रोटीन इज मोर सेटिएटिंग, सो इफ आई एम एडिंग मोर प्रोटीन यू विल नॉट फील लाइक स्नैकिंग एज अ डायब. योर बिगेस्ट चैलेंज इन एज अ प्री डायबिटिक इज स्नैकिंग, राइट? तो आई वॉन्ट टू अवॉइड स्नैकिंग. मैं बोलता हूँ 4 to 6 PM इज द डेथ नेल फॉर इंडियंस. 4 बजती भूख लगती एंड वो भूख में तो फिर पार्ले जी विद चाय, बिस्किट, चिप्स, सैंडविच, जूस, कोक. कोई जाके नट्स नहीं खाएगा, कोई जाके मखाना नहीं खाएगा, कोई खाखरा विद घी नहीं खाएगा. हम लोग घी को तो भूल ही गए. मैं दिन के 16 चम्मच घी पीता हूँ.
घी खराब नहीं है,
घी इज द बेस्ट फैट इन द वर्ल्ड. व्हेन आई गो टू US, साइंटिस्ट हग मी, यू कम फ्रॉम अ लैंड दैट हैज गिवन दिस वर्ल्ड घी.
रियली?
यस. घी इज सैचुरेटेड फैट बट इज नॉट लाइक एनी अदर सैचुरेटेड फैट. घी को ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर है, कार्बन का डबल बॉन्ड. इट्स अ फैट बर्नर.
घी
बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ घी, इट टेक बर्न्स अवे स्टबर्न फैट, इट रिड्यूसेस योर विसरल फैट.
इट्स ओनली इन घी की कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल में भी,
कोकोनट ऑयल में भी, ऑलिव ऑयल में भी है. ऑलिव ऑयल इज शॉर्ट चेन फैटी एसिड, कोकोनट ऑयल इज सिमिलर प्रॉपर्टीज, उससे MCT ऑयल बनता है.
कोकोनट ऑयल एंड घी इज ऑलमोस्ट
सुपर, बोथ हैव डिफरेंट. इट्स शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, ये सैचुरेटेड फैट है, बट बोथ हैव ग्रेट हेल्थ बेनिफिट्स, डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स. आप रोटी खाओ, मैं तो मेजर करता हूँ, अब रोटी के साथ घी खाओ, आपका ग्लूकोज स्पाइक विल बी मच लोअर.
तो आर यू सजेस्टिंग घी वाली रोटी?
100. If you are not, if you are not eating ghee wali roti, you are doing the biggest disservice to the country.
Huh?
Yes, sir. I have 4 spoons of ghee in my coffee first thing when I wake up.
Is it scientifically proven?
I don't talk anything which has no science validity. I have done 3 LinkedIn posts and 2 videos on ghee. Tell your team to take out all the material. If you want, I will share.
Do we have any paper or anything?
Of course.
It? Can you send the link of it? I want to attach it because
yeah, yeah.
ये सबसे different चीज़ है क्योंकि मैं first time सुन रहा हूँ.
ये तो बहुत myths break करने हैं. अगर ये myth नहीं होती तो ये हम लोग की आज state नहीं होती, right? सबसे ज़्यादा घी को किसने vilify किया? Ansel Keys ने, घी को नहीं, saturated fat को. वो स्टडी हुई, US ने जाके बोल दिया फैट इज बैड 70s. सो डोंट ईट फैट, ईट कार्ब्स, ईट मोर पास्ता, ईट मोर ब्रेड. दीज आर ऑफिशियल एडवर्टिजमेंट बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इन द US इन द 70s. अगर सैचुरेटेड फैट बैड था, अगर फैट बैड था तो हार्ट अटैक्स कम हो जाने चाहिए थे, हार्ट अटैक्स बढ़ गए. फिर पूरा मूवमेंट चला कार्ब इज बैड, लो कार्ब का. पता चला फैट तो सबसे अच्छा है, एसेंशियल, नॉट ऑल फैट्स आर गुड. बट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया में लिया गया बाय द मार्केटिंग वेजिटेबल ऑयल कंपनीज. घी इज बैड, ईट वेजिटेबल ऑयल. हार्ट लगाने लगे अपने तेल के पैक में.
तो फिर डॉक्टर्स इतना बुरा क्यों बोलते हैं घी को?
फूड इज पर्सनल and I always believe all behavior is belief driven. Meri belief hai ki ghee is the best thing. I have 16 spoons. Unki belief hai nahi to nahi khate. You must, all the listeners must do their work. Don't say because Prashant is saying or Raj is saying or X is saying. Do some work and use some common sense.
Okay, tell me 5 superfoods which helps in living longer.
I don't have any.
Kyun?
Which is the point, right? One thing cannot help you do something. I can tell you which are 5 foods which are great for your health.
Okay.
So, मेरा बहुत simple सा principle है. ये Robert Lustig ने सिखाया था मेरे Stanford course में. Protect the liver, feed the gut. Liver, because Sara, liver is the most underappreciated organ of the human body. It's a workhorse, a general. एवरीथिंग जो आपको जितनी न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सारा ब्लड लिवर के थ्रू ही जाता है. लिवर डिसाइड करता है कहाँ किसको बेचना. लिवर के पीछे पैंक्रियाज है जो बोलता है बॉस अब राजने को, इट्स अ वर्क हॉर्स. तो प्रोटेक्ट द लिवर.
कैसे कर सकते हैं लिवर?
शुगर कम, मैदा कम, लेस रिफाइंड का, प्रोटेक्ट द लिवर. सो इफ यू पुट दैट इन टू परस्पेक्टिव, एनी थिंग दैट हैज इम्पैक्ट टू रेज योर ब्लड शुगर सिग्निफिकेंटली, ईट लेस.
What was the line? Protect the liver?
Feed the gut.
Gut को अच्छा feed कैसे करें?
Fiber. Gut के दो friends हैं. Fiber is nothing but vegetables.
Fruits.
Nuts. Pulses. Fiber की diet को Mac diet बोलते हैं.
Mac diet.
Mac मतलब microbiota accessible carbohydrate.
हाँ.
Which is fiber. उसका दूसरा फ्रेंड है फर्मेंटेड फूड. फर्मेंटेड फूड में लाइफ स्ट्रेन होते हैं.
फर्मेंटेड फूड क्या क्या होता है?
दही, कड़ी, कोम्बुचा, सावर क्राफ्ट, पिकल.
एप्पल साइडर विनेगर इज फर्मेंटेड?
नो, विनेगर इज वेरी गुड टू रिड्यूस योर ब्लड ग्लूकोज बिकॉज दैट इज एसिटिक एसिड. इट रिड्यूसेस योर ब्लड ग्लूकोज.
लेना चाहिए एप्पल साइडर विनेगर?
मैं तो रोज लेता हूँ. मेरा लंच इज अ सैलड इज फुल ऑफ वेजिटेबल्स, नट्स, चीज, loads of olive oil and vinegar. Sometimes apple cider, sometimes not apple cider. My blood glucose will not spike.
I take apple cider vinegar before every meal, before lunch.
Super.
Every day. ये सब अभी दो महीने में चेंज
आप करना. एक कभी आप पहन के चेक करना. One day without it, one day with it.
My morning, my first meal of the day, first thing that I drink as soon as I get up is cumin water. Jeera water, warm. In that, there's amla juice, 1 spoon, and 1/2 teaspoon of coconut oil. And then I mix it and drink it.
So, आप जो coconut oil डालते हो, मैं उसके जगह घी डालता हूँ अपनी coffee
में. And this is every day. Is
very it good? Superb it is. मैं तो बोलूँगा एक क्यों यार, दो चम्मच अब तो दो डाल दो. I'll tell you why.
This is all Ryan decides, and he tells me, and I just take it.
So, sir, understand the science also. Ryan will also explain to you आपको. जब आप fasted state पे होते हो. So, एक बॉडी मेटाबॉलिकली फ्लेक्सिबल हो जाएगी. फ्रॉम ग्लूकोज इट विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू बर्न फैट. बट ब्रेन ओनली रन्स ऑन ग्लूकोज. आपने एक्सटेंडेड फास्ट किया, आपको थोड़ा माथा दुखेगा अगर आप इफ यू आर नॉट हैबिचुएटेड. इसलिए थोड़ा सॉल्ट ले लेते, सोडियम वाला पानी पीते हैं. कि द ओनली अदर न्यूट्रिएंट दैट द ब्रेन कैन यूज इज कीटोन्स. जो कीटोजेनिक डाइट का स्टार्टिंग कीटोन से हुआ था. The moment you are in a fasted state, ketone production starts. When you give it MCT oil or any derivative of coconut oil, it increases the production of ketones. So you will never, your brain will be very happy. So mere black coffee mein 4 chammaj ghee aur 2 chammaj MCT oil hota hai. It's a derivation of coconut oil only. Ab nahi milta to main coconut oil dal deta. It keeps you satiated.
Okay, I have last set of questions. इन सब में हमने फैट लॉस की बात करी, हमने स्लीप की बात करी, उसमें आपने फैटी लिवर की बात करी, डायबिटीज़ की करी, राइट? क्विक क्वेश्चन एक्चुअली लास्ट सेगमेंट पे, सेक्स की फिर बात करेंगे बिकॉज यू टच्ड अपॉन अ टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड यू स्टॉप्ड. आई वांट टू टॉक अबाउट इट. बिफोर दैट, वेपिंग बहुत लोग करते हैं, उसका कोई फर्क? उससे डू यू थिंक दैट दैट हैज साइड इफेक्ट्स और एनी?
ऑफ कोर्स इट वीकेंस योर एंडोथेलियल लेयर. वेपिंग इज,
क्योंकि आई वाज रीड एंड आई एम आस्किंग यू व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. बहुत लोग वेप करते हैं मेरे आसपास. बहुत सारे लोग. आई डोंट वेप. मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया वेप, और ना हुक्का, शीशा, व्हाटएवर. स्मोकिंग आई हैव नेवर ट्राइड इट. बट आसपास वेप करते हैं और सबका होता है यार स्मोकिंग से बेटर है, मतलब स्मोकिंग में निकोटीन होता है तो वेप करते हैं हम लोग. दिस इज़ अ हेल्दियर चॉइस. एंड फिर मैंने एक पॉडकास्ट देखा था हुबमैन का, तो एंड्री हुबमैन बता रहा है उसमें कि स्मोकिंग किल्स योर बॉडी बट वेपिंग किल्स योर ब्रेन. Because it releases dopamine level every second and then it just kills your brain again and again, makes you addicted. And then you start losing creativity, you start losing focus, you start losing every major function that brain does. If you get excessively addicted to vaping, stop it. This is what I thought. So that's why I want to know more. 100%. Keep vaping, kya karta hai? Yeah,
Andrew Huberman is different level, right? I can't ever dispute because I've learned so much of what we've spoken of from all these gurus. So on a scale of 1 to 10, if smoking is worse in terms of 10, vaping will be at 9. So is smoking better than, is vaping better than smoking? Yes. but it's 9 out of 10, my friend. It's mechanical action is what I'm worried about. Anytime you are inhaling any smoke, it is weakening your endothelial layer of your blood vessel, which will increase your chance of heart attack, your stroke, and of course now cancer also. Ek cheez bahut direct linkage hai to cancer, which is smoking. Number one, within cancer, number one cancer is lung cancer. And US mein now data hai, as smoking rates have come down, lung cancer deaths have also come down in proportion. Right? Only other thing we have learned over the last 40, 50, 60 years of our work on cancer is the second biggest contributor to cancer is obesity. Right? So cancer is the number one reason. If cancer is at 10, vaping is at 9. But the mechanism, it weakens the endothelial layer. It causes damage to your, because koi bhi cheez le rahi hai body mein, wo banti to cells se hi hai. To agar cell koi weak kar de raha hai, to the chances of DNA breakages are very, very high. It has now also got substantiated because not only smokers are dying, but passive smokers are also dying.
Yeah.
Mechanism to say, main breathe kar raha hun, something which is external weakening. Why does India have such high respiratory deaths? So our problem kya? Pollution. Why are we at 69, US is at 79 years? Big contributor is water and pollution. So aise hi aap smoke kar rahe ho by living in this country, because whatever, we are 1/3 the size of US, 3 times more people. There is agri waste, there is municipal waste, there is industrial waste. So unfortunate. Uske upar smoke bhi karna.
So vaping or smoking, is that
almost little same? Different, almost same. Nicotine is not what causes cancer, which is why people say jisko smoking give up karna hai, aap nicotine chiclet khalo, nicotine patch laga lo. It is the other carcinogens which are in tobacco which causes. There are 7,000 carcinogens in the tobacco. Carcinogens are things that lead to DNA breakage, which leads to cancer.
You're telling me that vaping has almost same level, same way of smoking.
10% plus minus, 20% plus minus. How does it matter here?
And vaping is causing cancer as well.
Not just vaping, passive vaping also.
Tell me about, we want to touch this, ki you said if you sleep better, jo log sote nahi hai, wo unko sex karne ka na man hota, na wo sex mein better perform kar paate. Is that what you said? Kyun aisa hota?
Sex परफॉर्म नहीं कर पाते, वही नहीं बोल रहा हूं मैं, बोलता हूं सो सेक्स, सो देयर आर टू पार्ट्स टू सेक्स. वन इज सेक्स फॉर प्रोक्रिएशन.
ओके, लेट्स जस्ट मेक इट दिस वे कि वो, आई वाज रीडिंग अ रिसर्च रिसेंटली, बट दिस वाज यूएस, आई डोंट नो इंडिया में कितना ट्रू है. नंबर ऑफ पीपल हु अर्लियर यूज्ड टू, लाइक द टाइम पीपल हैव सेक्स हैज कंप्लीटली रिड्यूस्ड देन इट यूज्ड टू बी इन 2000s. तो अगर एक नॉर्मल कपल है वो, फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 टाइम्स सेक्स करता था इन अ मंथ, इट हैज़ गॉन डाउन टू 6 टाइम्स. सो 40% रिडक्शन आया है इन नंबर ऑफ टाइम पीपल वॉन्ट टू हैव सेक्स. दैट इज़ वन. सेकेंड इज एवरेज टाइमिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स वाइल दे आर परफॉर्मिंग सेक्स हैज़ रिड्यूस सिग्निफिकेंटली. मल्टीपल रीजन्स, ठीक है, दीज आर लाइक द टू बिग थिंग्स विच आई रेड. एंड द थर्ड एंड सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि now that there's more awareness about sex and taboo thoda kam hote ja raha hai, jab openly people are doing it, people are challenging, and people, I think there's more content about it, then don't you think it should increase? Reduce kyun ho raha hai? Why are people not, and har kisi ko apna sex performance better karna hai, to sex performance agar better karna hai, awareness bhi hai, content bhi hai, to sex performance loga kam hote ja raha hai.
So abhi maine ek post ki thi, abhi aaya tha recently, 2 din pehle ya 3 din pehle, कि क्या करने से, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हार्ट अटैक के चांसेस
बढ़ जा रहे हैं. आई रेड द मोर देन 90%.
इससे बुलशिट स्टडी मैंने अपने लाइफ में नहीं पढ़ा, मैंने काफी स्टडीज पढ़े. राइट, व्हाई आई एम लिंकिंग दिस टू व्हाट यू आर सेइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ दैट स्टडी वुड बी वेरी सिमिलर टू दिस स्टडी, विच इज यू आर आस्किंग पीपल अ क्वेश्चन एंड यू आर रिलाइंग ऑन टू थिंग्स, देयर मेमोरी एंड देयर ऑनेस्टी. यूएस ने एक स्टडी की थी. सो आपको पूछा, आपने आज कितनी कैलोरीज खाई है, तो आपने आपके प्लेट देख के आपने बताया. सो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट पीपल थॉट दे एट वर्सेस व्हाट दे एट वाज 50% 50%, they ate 50% higher calories than what they thought. And one was asked blankly, आज आपने कितनी खाई? फिर measure किया, तो again same. Whenever you do a study, basis a recall and memory, I will not rely on that study. For me, the weightage of that is 5%, 10%. So just because somebody says I'm having less sex, how does it, can I prove it? Mm. Do I measure it? हम लोग के स्टडीज में हम लोग RCTs को गोल्डन गोल्ड बोलते हैं, राइट, विच इज रैंडमली कंट्रोल्ड ट्रायल की यार, एक कंट्रोल ग्रुप है, एक अनकंट्रोल ग्रुप है, आप देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. सबसे पहले स्टडी के पार्टिसिपेंट्स कितने थे, उनकी एज क्या थी, उनका एनवायरनमेंट क्या था, उनको अपने पार्टनर से प्यार था, नहीं था, एक्साइटेड, सो मेनी फैक्टर्स टू कंसिडर. सो फॉर मी टू बिलीव कि पीपल आर हैविंग लेस सेक्स इज doesn't come naturally because it's a natural instinct. But if average sex is say 7 times a month, for example, there are people who will be doing it 20 times or people who will be doing once. But average is, so you don't look at averages when it comes. So I don't have a point of view on that. I am seeing, and I'm very happy about it also for my daughter who's 20, 21, that the awareness around sex is increasing.
Yeah.
Right? People want to experiment before they take a very important decision of your life, because once you choose to get married for life, hopefully, it is an important part of that. And people are now opening up the idea of experimenting to know what I like, what I don't like. Very interesting studies that we have done. I think aapke pod mein bhi kisi ne bola tha, I don't remember, ki women have more sex than men. Or want to have more sex than men, in the sense ki evolutionary perspective se dekhe to, so okay, differently put, women last longer, they have more orgasms than men have in a session. The reason is because evolutionary sense mein men had to perform and move, unka kaam to procreate kiya, fir khana khojna hai, fir care karna hai, whereas women had all the time in the world. So as a result of this, the way the hormones are made, women in an event can have multiple orgasms, whereas men cannot have multiple orgasms, one and you are out. So there are evolutionary reasons, which is why women are mostly disappointed with sex. Somewhere because of that, we started attaching timing to sex, which is why when you hear to some good podcasts on, they say more than sex, the foreplay is more important.
Yeah.
That will determine your lasting. Right. Obviously, like smoking is to cancer, porn is to sex. If you are watching too much of porn, you will lose interest in sex. Why? Because you've already created an image of you. You think this is what sex is. It's like watching movies and thinking this is reality. It is not reality. Reality is very different than movies, which is why we go to see movies. Movies, agar reality dikhane lage, to hum movies dekhna kyun hai, to roz dekh raha hu. It is the same in porn. So, people who watch a lot of porn get disappointed when they go through the sex, which is why bolte hain, mat dekho to better, dekho to kam dekho. You use porn from an inquisitiveness point of view as teenage because you are growing and you are learning and you are excited. It's different. Wo phase chala jayega once you start experimenting. But to me, to believe that either people are having less sex or people are losing interest, mere ko palatable nahi ho raha abhi.
You know, that's a very good way. I've never heard this. I'm glad I brought this up. Kyunki I think ye bahut achha tarika hai to read researches and studies. कि फर्स्ट चीज़ जब भी कोई स्टडी आती है, न्यूज़ आती है, बिकॉज इंटरनेट इज़ फिल्ड विथ सो मच न्यूज़, एंड जो जैसे हम लोग हैं, हम लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं, तो जो स्टडीज़ आती है क्रेडिबल सोर्सेज में, वो पढ़ लेते हैं और उससे हमारा एक व्यू पॉइंट और पर्सपेक्टिव बना लेते हैं. आई थिंक नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई स्टडी मैं पढ़ूंगा या कोई भी जो है देख रहा है वो पढ़े या किसी भी क्रेडिबल सोर्स में भी देख रहा है, तो फर्स्ट थिंग वी शुड चेक इज़ हे क्या ये लोगों से पूछी गई है कि ये लोगों पर करी गई है.
करेक्ट.
कि अगर पूछी गई है तो देन उसका बेस बहुत बहुत ही वीक है, फंडामेंटल उसके बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वी शुड नॉट बिलीव इन दैट. रियली लव दैट वे दैट यू एक्सप्लेन, क्योंकि लोगों से पूछना, आप मुझसे भी कुछ पूछोगे या 10,000 लोगों से पूछोगे, मैं आपसे भी कुछ पूछूंगा, हमारी मेमोरी में जो याद होगा हम वही बताएंगे, वर्सेस जो एक्चुअल करा होगा दैट इज बैंग ऑन. आई लव्ड इट
एंड थैंक यू.
थैंक गॉड दैट आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन. दिस वाज इनक्रेडिबल. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग
फॉर हैविंग मी हियर. आई एम ऑनर्ड टू बी हियर यार.
इट वाज आई लव्ड इट.
थैंक यू सो मच एपिसोड एंड तक देखने के लिए. मैं ना मेरी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ को लेके बहुत सीरियस हूँ. मुझे हर चीज़ में ग्रो करना है एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग सब ग्रो करें. इसीलिए हम ये चैनल पे वर्ल्ड के बेस्ट लोग लाने की कोशिश करते हैं एंड उनसे हर चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. मुझे पर्सनल ग्रोथ के बारे में लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को लेकर नहीं होती. पर्सनल ग्रोथ मतलब आपका करियर अच्छा होना चाहिए, आपकी वेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपको ट्रूथ वर्ल्ड ट्रूथ के बारे में पता होना चाहिए, आपको कंट्री में क्या चल रहा है पता होना चाहिए, आपकी रिलेशनशिप बेटर होनी चाहिए. सबको सब चीज़ों को जब साथ में बढ़ाते हैं दैट होलिस्टिक ग्रोथ इज़ फॉर मी पर्सनल ग्रोथ. एंड हर इंसान को उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए. एंड द ईजिएस्ट वे टू डू दैट इज़ आप जब अच्छा कंटेंट सुनते हैं ग्रोथ के बारे में, वो फर्स्ट स्टेप होती है. क्योंकि आप अच्छा सुनेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे और कॉन्शियसली चूज़ करेंगे कि आप इसी चीज़ों के अराउंड अपना माइंड चलाएं तो आप आपकी लाइफ में चेंज ला सकेंगे. सो वॉच दिस एपिसोड एंड शेयर दिस एपिसोड विद एटलीस्ट वन पर्सन जिसकी लाइफ में इससे चेंज आएगा, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर पाएगा. अनटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट. Don't forget to subscribe, like, share, and do whatever you want. And let us know in the comments what did you think about this episode.